जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल
जन वल्लभ गिरि वरदा। Jai Radha Giridhari 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 Radha Giridh
कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की शशि गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे तदभक्ताय नमो नमः ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् लीलाशुकोसो वृषभानुजा चंचो प्रिय चुंबनेन एकांतिकोनं यरहस्य पाठी गोलोक प्रसाद पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र स्यपुटेशया the तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान का स्वरूप है, जिसका श्रवण करके हम सभी कल्मषों से मुक्त होकर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे दिव्य भागवत कथा श्रवण करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। गत सत्र में यहां पर हम सब ने श्रवण किया परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी लोक लोकांतर का वर्णन करते हुए नरक लोक का वर्णन करते हैं। जो नरक लोक पृथ्वी से नीचे दक्षिणी छोर पर और गर्भोदक सागर के ऊपर जिसका स्थान है, ये नरक भगवान के द्वारा जीवों को दंड करने का एक कारखाना है। संसार में हम रोज सुबह कपड़े पहनते हैं और शाम को जब वे गंदे हो जाते हैं तो माताएं सुबह उठकर इस कपड़े को पानी में डालकर साबुन लगाकर कपड़े को पटक कर फिर उस कपड़े का मैल दूर करती है। वैसे ही संसार में रहने वाला जीव जब पापों के द्वारा दुर्मिल हो जाता है तब यमराज जी उसे साफ करते हैं। कपड़े को यदि साफ करना हो तो कपड़े के साथ प्रेम करके काम नहीं बनेगा, उसे पटकना होगा, उसे मारना होगा, तब जाकर कपड़े का मैल निकलता है। ठीक उसी प्रकार इस जीव को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए यमराज जी दंड देते हैं, दुखी करते हैं। और किस पाप का कैसा फल होता है और उसकी सजा कहां मिलती है, सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से परीक्षित महाराज को सुनाए। पाप तो बहुत सारे हैं, सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं, परीक्षित वैसे तो हजारों प्रकार के नरक है, परंतु समय कम होने के कारण मैं तुम्हें केवल 28 प्रकार के नरक का वर्णन कर रहा हूं। और यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो यह सभी नरकों में जाना और पाप करना, ये सभी पापों का मूल केवल 4 पाप से होता है। पाप तो हजारों प्रकार के होते हैं, परंतु 4 पाप मुख्य पाप हैं। यदि 4 चीज हम करना बंद कर देंगे तो किसी भी प्रकार का पाप हमसे नहीं होगा। ये 4 चीज जो है धर्म के 4 चरण हैं, और यदि धर्म के इस चरण को हम तोड़ दिए तो फिर आगे चलकर हजारों हजारों पाप में हम डूबते जाएंगे। 4 पाप कौन से हैं? भागवत कथा के दूसरे दिन में आपने श्रवण किया था, परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया, धूतम पानम, जहां पर जुआ खेला जा रहा हो, जहां पर शराब का, सिगरेट तंबाकू का नशा किया जा रहा हो, जहां पर अवैध स्त्री संग हो रहा हो और जहां पर अखाद्य वस्तु खाई जा रही हो, मांसाहार, अंडे या चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, ऐसे स्थान पर कलयुग को स्थान दिया है। और ये चार प्रकार के पाप यदि हम करना बंद कर देते हैं तो बाकी के जो पाप हैं वे हमसे नहीं होंगे, क्योंकि सभी पाप का जड़ यहां से शुरू होता है। मांसाहार यदि कोई करता है तो मांसाहार करने से हृदय की दया चली जाती है, पर स्त्री संग करने से पवित्रता चली जाती है, और नशा आदि करने से तपस्या चली जाती है, और जुआ खेलने से जीवन से सत्यता चली जाती है। और ये चार चीज यदि जीवन से चली गई तो व्यक्ति हजारों हजारों पापों में उलझता जाएगा। आपने दलदल देखा है? जब कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो जितना बाहर निकलने का प्रयास करता है उतना वह अंदर घुसते जाता है। तो यह चार पाप यदि करना हम बंद कर देंगे, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार और अवैध स्त्री संग, तो अन्य अन्य पाप अटक सकते हैं। परंतु परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये तो ठीक है जिसने पाप नहीं किए हैं ये कथा सुनकर पाप नहीं करेंगे, परंतु जो पाप कर चुके हैं उन लोगों के लिए क्या है? हमारे मन में भी यह प्रश्न हो सकता है। चलो आपके मुख से हमने सुना कि यह सब नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, तो आज से बंद कर देंगे, परंतु आज तक जो करते आए हैं उसका क्या होगा? अधुनेह महाभाग यथेव नरका नरह नाना उग्र यातना न या तन में व्याख्या तुम अर्हसी। हे सुखदेव गोस्वामी, अधुना अब फिलहाल वर्तमान में आप यह बताइए कि नरक में जाने से जीवों को कैसे बचाया जा सके। हे महाभाग, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को महाभाग कह रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी महाभाग का अर्थ लिखते हैं महाभाग्यवान, महाभाग्यशाली। हमारी तीक्ष्ण बुद्धि से इस बात को सोचना चाहिए कि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को महाभाग्यशाली कह रहे हैं। यदि विचार किया जाए तो इस संसार में हम उन लोगों को भाग्यशाली कहते हैं जिसके पास धन है, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर। प्राय समाज में यह मान्यता है कि जिसके पास धन हो, शरीर हो, गाड़ी बंगला हो, वह भाग्यवान है, भाग्यशाली है। परंतु यहां आप देखिए सुखदेव गोस्वामी के पास न तो कोई धन है, न बंगला है, न गाड़ी है, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को महाभाग्यवान कह रहे हैं। तो हमारी मान्यता गलत है या परीक्षित महाराज की मान्यता गलत है? हम गलत हैं या भागवत गलत है? भागवत पूर्ण सत्य ज्ञान प्रदान करने वाला ग्रंथ है और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को केवल भाग्यशाली नहीं महाभाग्यशाली कह रहे हैं। भक्तों, वास्तव में इस संसार में महाभाग्यशाली किसी के पास धन हो जाए, गाड़ी बंगला हो जाए, वह नहीं है। क्योंकि कितना भी धन हो, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, बंगले हो, यह धन, गाड़ी, बंगले, नौकर चाकर सुख नहीं दे सकते हैं। परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति सर्व सुखी हो सकता है, नित्य सुखी हो सकता है। इसलिए इस संसार में वास्तव में महाभाग्यशाली वही व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। ये केवल परीक्षित महाराज ही नहीं, साक्षात भगवान भी इस बात को कहते हैं। अब देखिए, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन भाग्यशाली है, ये सब हम लोग तय नहीं करते हैं, ये भगवान तय करते हैं। हम तो हमारी दृष्टि से दूसरों को कहते हैं। अब चोरों की दृष्टि से जो सबसे बड़ा चोर होगा उनके लिए वह अच्छा होगा, डाकुओं को वह व्यक्ति अच्छा लगेगा जो सबसे बड़ा डाकू होगा। तो सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से सोचते हैं, परंतु भगवान की दृष्टि से कौन भाग्यशाली है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट के ऊपर उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे रूप, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, 84 लक्षत जीव कर ये भ्रमण। यूं तो इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीवों की संख्या है, कोई गिनती नहीं कर सकता। इस पृथ्वी को मिक्सर में डाल के चूर चूर कर दो, हो सकता है कि उसके कण को गिना जा सके, नहीं हो सकता है, लेकिन मानो पृथ्वी के एक एक कण को यदि गिना जा सके, परंतु इस ब्रह्मांड में कितने जीव हैं ये कोई नहीं गिन सकता है, अनंत जीव की संख्या है। कितने कितने जीव हैं? कहते हैं इस ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, और एक प्रकार में भी करोड़ों अरबों जीव हैं। 84 लाख तो केवल उनके प्रकार है, और एक एक प्रकार में जीवों की संख्या अरब है। कहते हैं जलजान 9 लक्षाणी, पानी में जल में 9 लाख प्रकार के जीव रहते हैं, जैसे वेल मछली, शार्क मछली से अलग अलग प्रकार के 9 लाख प्रकार के जीव केवल पानी में रहते हैं। देखा है कभी आपने? नहीं देखा है, लेकिन शास्त्र इस बात को कहता है, पानी में 9 लाख प्रकार के जीव स्थावरा लक्ष्य विशंति, ये पेड़ और पौधे जो हम देख रहे हैं, ये 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे इस ब्रह्मांड में हैं। हम तो 20 या ज्यादा से ज्यादा 200 को जानते हैं, परंतु यह संख्या केवल पृथ्वी पर ही नहीं, अन्य अन्य लोकों में भी है। क्रूम या रुद्र संख्या का, छोटे छोटे जीव जंतु कीट पतंग मच्छर कीड़े इत्यादि नाली में रहने वाले 11 लाख प्रकार के जीव हैं। पक्षी नाम 10 लक्षण, कहते हैं 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षियों की संख्या है इस ब्रह्मांड में। 30 लक्षाणी पशव, 30 लाख प्रकार के चार पैर पर चलने वाले प्राणी की संख्या है, और 4 लक्षाणी मानुष, और केवल 4 लाख प्रकार के मनुष्य की संख्या है। इस प्रकार से 84 लाख की योनि, और एक एक योनि में करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जीव इस ब्रह्मांड में भरे हुए हैं। कहते हैं अनंत अनंत जीवों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। कहते हैं इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव भ्रमण करते हैं, कुत्ते बैल गधे मनुष्य बिल्ली ऊंट, अनंत अनंत जीव इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, परंतु भ्रमण करते 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 जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और गुरु की कृपा से कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उस कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने वाला इस ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली जीव है, महाभाग्यशाली। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता। भक्ति रूपी लता का बीज प्राप्त हो जाना, भक्ति प्राप्त हो जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य। क्योंकि हो सकता है आपको धन मिल जाए, गाड़ी बंगला पति पत्नी मिल जाए, परंतु भक्ति मिलना बहुत कठिन है। और यह भक्ति मात्र गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलती है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थित सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित महाभाग्यशाली कह रहे हैं। हे महाभाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, अधुना अब आप मुझे जो लोग पाप कर चुके हैं ऐसे पापियों को नरक में जाने से कैसे बचाया जाए, इसका उत्तर दीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, परीक्षित यदि नरक में जाने से बचना है, कहते न चेदि हेवा पचितिम यतामहंस कृतस्य कुरियान मनुक्त पाणि भी ध्रुवम सवे प्रेत्य नरकानुपेति यह कीर्ति तामे भवत स्मिग्न यातना। जीवन में पाप किए हैं और पाप के फल स्वरूप नरक में जाना होता है, परंतु नरक में जाने से यदि बचना है तो इसी जीवन में अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। यदि कोई प्रायश्चित नहीं करता है तो निश्चित वह नरक में जाता ही। प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? प्रायश्चित को दूसरे शब्द में पश्चाताप कहा जाता है। पश्च का अर्थ होता है बाद में, आफ्टर, और ताप का अर्थ होता है कष्ट देना। पाप हो जाने के बाद व्यक्ति अफसोस करता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता है, इसे पश्चाताप कहा जाता है। कहते हैं यदि जीवन में छोटे पाप किए हैं तो छोटा पश्चाताप, बड़े पाप किए हैं तो बड़ा पश्चाताप। मृत्यु आने से पहले सबको पश्चाताप कर लेना चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और यदि प्रायश्चित नहीं किया तो यहां पृथ्वी पर किए गए पाप की सजा नरक में करोड़ों गुना ज्यादा मिलेगी। प्रायश्चित कर लेना चाहिए। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, आप तो कहते हो प्रायश्चित करना चाहिए, परंतु इस संसार में कई लोग प्रायश्चित करते भी हैं, पाप करते हैं और फिर तीर्थ स्थानों में जाते हैं और तीर्थ स्थानों में जाकर गंगा का हाथ में जल लेकर कहते हैं कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, प्रण लेते हैं कि आज के बाद गुटखा नहीं खाऊंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा, चाय कॉफी नहीं पीऊंगा, परंतु जैसे ही वे वापस अपने घर पर आ जाते हैं तुरंत वह खाना पीना शुरू कर देते हैं। संसार में लोग प्रायश्चित तो करते हैं परंतु प्रायश्चित के बाद पाप करने लगते हैं, तो पाप करते हैं, बाद में प्रायश्चित करते हैं, फिर से पाप करते हैं, फिर से प्रायश्चित करते हैं। दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन अपि आत्मनोहितम करोति भूयो विवश प्रायश्चितम मतो कथम। संसार में लोग देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव भी करते हैं कि यह पाप कर रहे हैं इसलिए हमें दुख मिल रहा है, लेकिन फिर भी वह पाप करना छोड़ते नहीं है। उदाहरण देते हैं, कश्चित निवर्तते भद्रात कश्चित चरति ततः पुनः प्रायश्चितम मथो पार्थम मन्ये गुंजर शौचवत। गुंजर का अर्थ होता है हाथी। कहते हाथी जब पानी में स्नान करता है तो घंटों भर स्नान करता है, 3-4-5 घंटे तक पानी में स्नान करता रहता है, परंतु हाथी जैसे ही पानी से बाहर निकलता है तुरंत अपनी सूंड से उस नदी की बालू को अपने शरीर के ऊपर डालने लगता है। अब बताइए, हाथी को स्नान करने के बाद उस नदी की बालू को अपने शरीर पर डालकर शरीर बिगाड़ना ही था तो 5 घंटे तक स्नान करने का क्या लाभ? यदि प्रायश्चित करने के बाद पाप करना है तो प्रायश्चित का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि व्यक्ति पाप करना ही बंद कर दे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, तुमने बहुत ठीक कहा है, ये सत्य है। कर्मणा कर्म निर्हारो न हात्यंतिक इष्यते अविद्व अधिकारित्वा प्रायश्चितम विमर्शनम। कर्म से कर्म को कभी नहीं काटा जा सकता है। पाप करना एक कर्म है और प्रायश्चित करना भी एक कर्म है। कर्म रूपी पाप को प्रायश्चित रूपी कर्म से कभी नहीं काटा जा सकता है। कुछ लोग यदि सोचे कि हम लोग पाप कर रहे हैं और पाप करने के बाद पुण्य करेंगे और पुण्य करने से हमारे पाप मिट जाएंगे, तो पुण्य करने से पाप कभी नहीं मिटते हैं। आपके पाप की सजा भी मिलेगी और पुण्य का फल भी मिलेगा। प्रभुपाद जी दृष्टांत देते हैं, जैसे यदि आपने इस जीवन में बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया है, तो दूसरा जन्म आपको कुत्ते का मिलेगा। पाप के फल स्वरूप दूसरा जन्म कुत्ते का मिलेगा। परंतु उसी जीवन में आपने पाप के साथ कुछ पुण्य भी किया है, तो पुण्य के फल स्वरूप कुत्ते का जन्म तो मिलेगा ही, क्योंकि पाप किया है। परंतु पुण्य किया है इसलिए किसी धनी परिवार में आप कुत्ता बनोगे। हमने देखा है कभी कभी कुत्ते मर्सिडीज में घूमते हैं, एयर कंडीशन कार में। बड़े बड़े लोगों के घर पे कुत्ते होते हैं, हमारे मुंबई में, अमेरिका में। हम वैसे घर में नहीं रहते हैं, वैसे कुत्ते बड़े बड़े घर में रहते हैं, एयर कंडीशन कार में घूमते हैं। उसके लिए नहाने का बाथरूम अलग होता है। तो साफ साफ पता चलता है कि इन लोगों ने पिछले जन्म में पाप भी किया है और पुण्य भी किया है। पाप के फल स्वरूप कुत्ता बने, पुण्य के फल स्वरूप अमीर व्यक्ति के घर पर। तो इस प्रकार पाप को पुण्य के द्वारा नहीं काटा जा सकता। इसलिए नाशनत पथ्यम एवान्नम व्याधयो अभिभवन्ति ही एवं नियम कृदाजन शने शेमाय कल्पते। इसलिए हमको प्रायश्चित न करते हुए पाप के बारे में ज्ञात होना चाहिए। पहले कर्म मार्ग का वर्णन किए, अब ज्ञान मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। यदि सबको ज्ञान हो जाए कि ये कार्य करना पाप है, तो पाप करना बंद कर देंगे। दृष्टांत देते हैं, जैसे दूध में किसी ने जहर मिला दिया हो और यदि किसी को पता न हो तो वह जहर वाला दूध पी जाएगा, परंतु पता चल जाए कि इस दूध में जहर है तो वह कभी दूध पिएगा। ठीक उसी प्रकार यदि किसी को पता चल जाए कि ये काम करेंगे तो हमें पाप लगेगा, तो वह पाप करना बंद कर देगा। सुखदेव गोस्वामी का यह कहना है। परंतु परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु, इस संसार में इतने मूर्ख लोग भरे हैं, इतने मूर्ख लोग भरे हैं कि जानते हैं कि ये काम करेंगे हमें पाप लगेगा। सिगरेट के बॉक्स के ऊपर लिखा है कि इसको पीने वाला कैंसर होगा। सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ लिखा होता है, गुटखा के ऊपर लिखा होता है कि इसे खाने पर कैंसर होगा। देखते हैं, अनुभव भी करते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी खाते हैं और सिगरेट पीते हैं। ज्ञान होने के बाद भी संसार के लोग पाप करते हैं, अब क्या किया जाए? तब परीक्षित महाराज कहते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये सभी पाप नष्ट हो जाए और व्यक्ति शुद्ध हो जाए। तब सुखदेव गोस्वामी और एक उत्तर देते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। यदि नरक में जाने से बचना है, पापों से मुक्त होना है, तो एक नहीं अनेकों चीज करनी चाहिए। पहली चीज क्या है? तपसा, तपस्या करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। शम का अर्थ होता है अपने मन को वश में करना चाहिए। दम का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय को वश में करना चाहिए। त्याग का अर्थ होता है दान देना चाहिए। सत्य का अर्थ होता है जीवन में केवल सत्य ही बोलना चाहिए। शौचाभ्याम, शौच का अर्थ होता है जीवन में पवित्र रहना चाहिए। यम का अर्थ होता है जो नहीं करना है, और नियम का अर्थ होता है जो करना है। इतनी वस्तु का यदि पालन करोगे तो आपसे पाप कभी नहीं होगा और आप नरक में जाने से बच जाओगे। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रभु आपने इतना बड़ा लिस्ट दे दिया, तपस्या करो, ब्रह्मचर्य करो, शम मन को वश में करो, इंद्रिय को वश में करो, दान दो, सत्य बोलो, पवित्र रहो, यम का पालन करो, नियम का पालन करो। इनमें से कलयुग में रहने वाला जीव एक वस्तु का भी पालन नहीं कर सकता है। आप इतनी वस्तु गिना दी। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, प्रभु अब आप साफ साफ बता दीजिए कि नरक में जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और अब ऐसा उपाय मत दीजिए, पूर्ण उपाय दीजिए। क्योंकि यह सत्य है, जब तक व्यक्ति के हृदय में पाप करने की वृत्ति होगी, जब तक पाप करने की वासना होगी, तब तक व्यक्ति पाप करना बंद नहीं करेगा। आप कितना भी प्रायश्चित कर लो, हृदय में कामना है, पाप करने की वृत्ति है, व्यक्ति पाप निश्चित करेगा। तो पाप नष्ट हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पाप के साथ साथ पाप करने की जो वृत्ति है ये नष्ट हो जाना ये सबसे बड़ी बात है। परीक्षित महाराज कहते हैं, एक ऐसा उपाय बताओ जो करने से पाप भी नष्ट हो जाए, पाप करने की इच्छा भी नष्ट हो जाए, और इतना ही नहीं, पाप नष्ट हो जाए, पाप करने की इच्छा भी नष्ट हो जाए, व्यक्ति नरक में जाने से भी बच जाए और मरने के बाद भगवान के धाम में चला जाए, ऐसा उपाय बताइए। और ऊपर से कह रहे हैं कि वह उपाय सरल होना चाहिए, ऐसा नहीं तपस्या, ब्रह्मचर्य, सरल उपाय बताइए। जो उपाय बच्चे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा कोई भी व्यक्ति कर सके, सरल होना चाहिए और उससे पाप भी नष्ट होना चाहिए, पाप करने की वृत्ति भी नष्ट होनी चाहिए, नरक में जाने से भी व्यक्ति बचना चाहिए और भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा कोई उपाय है? तब सुखदेव गोस्वामी अंत में इसका उपाय देते हैं, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अगम गुणवंती कार्स्तियन निहारम इव भास्कर। यदि इस प्रकार से आपको सरल उपाय चाहिए, नरक में जाने से बचना है और भगवत धाम प्राप्त करना है, तो एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जप करो। महामंत्र का जप करने से व्यक्ति नरक से बच सकता है, पाप से मुक्त हो सकता है, पाप करने की वासना से मुक्त हो सकता है और मरने के बाद भगवान के धाम में जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के महामंत्र का जप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति पहली बात समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, दूसरी बात पाप करने की वृत्ति भी चली जाएगी। आप जीवन में करके देखिए, यदि आपको कोई व्यसन है, और कुछ मत कीजिए, कुछ मत छोड़िए, केवल भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र जपिए, जीवन में जो भी दुर्गुण है सब कुछ ऑटोमेटिक चले जाएंगे महामंत्र जपने से। और महामंत्र को, भगवान के नाम को छोड़कर व्यक्ति शुद्ध होने का, पाप से मुक्त होने का कितना भी उपाय करे हो नहीं सकता। सग्रीचिनो हयम लोके पंता क्षेमो कुतो भय सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण। कहते हैं राजेंद्र, हे राजन, भगवान का नाम न लेकर पवित्र और शुद्ध होने के लिए लोग अन्य अन्य उपाय करते हैं। ये उपाय वैसे ही हैं जैसे कोई एक बोतल में शराब भरकर उसे नदी में और तीर्थों में घुमाए। जब तक उस बोतल से शराब नहीं निकाली जाएगी तब तक व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता है। जब तक भगवान का नाम लेकर व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा तब तक वह नरक में जाने से नहीं बच सकता। और सुखदेव गोस्वामी भगवान के नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं, सकृत मनः कृष्ण पदार विंदयो निर्वेशितम तद गुणराग ऐरिह नते यमं पाशभूतस्य तद भटान सपनेपि पश्यन्ति हिश्चीर्ण निष्कृता। ये परीक्षित, भगवान के नाम की महिमा तो अद्भुत है, परंतु उस कृष्ण का नाम कोई जीवन में एक बार भी ले लेता है तो जागृत की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी यमराज और यमराज के दूत नहीं आते हैं। एक बार भी यदि कोई कृष्ण का नाम अपने मुख से ले लेता है तो जागृत की बात तो दूर रही, स्वप्ने भी पश्यन्ति, स्वप्न में भी यमराज और यमदूत नहीं आते हैं। जब इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहे, परीक्षित महाराज कहते हैं एक बार भगवान का नाम लेने से नरक में जाने से भी जीव बच जाएगा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हमें भी कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है। तब विश्वास दिलाने के लिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक इतिहास सुनाते हैं। इतिहासम इमं गुह्यम, एक गुह्य इतिहास। भगवान कुंभ संभव कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि से सुखदेव गोस्वामी ने यह इतिहास सुना था। कहते मलई पर्वत पे बैठकर भगवान नील माधव का चरण स्पर्श करके अगस्त ऋषि ने सुखदेव गोस्वामी को यह कथा सुनाई थी। यह सत्य कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुना रहे हैं। कथा प्रारंभ करते हैं और यह कथा भगवान के नाम की महिमा बताती है, भगवान के एक नाम की कितनी महिमा है। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासीरपति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक समय की बात, कान्य कुब्ज नाम का एक गांव था। आज भी वह गांव हमारे भारत में कानपुर के बगल में कन्नौज नाम से विख्यात है। तो उस कन्नौज को भागवत में कान्य कुब्ज कहा गया है। तो उस कन्नौज नाम के गांव में कान्य कुब्ज में द्विज कश्चित कोई एक ब्राह्मण रहता था। उनका नाम क्या था? कहते उनका नाम अजामिल था। और उसकी पत्नी कौन थी? कहते दासीर पति। यजामिल एक वेश्या का पति था। मैंने पहले ही कहा आपको कि वेश्या का कोई पति नहीं होता है, धन ही वेश्या का पति होता है। परंतु ये वेश्या को अपनी पत्नी मानता था और वेश्या को अपनी पत्नी बनाने के कारण नामना नष्ट सदाचारो, उनका जो आचरण था व्यसत हो गया, नष्ट हो गया। जीवन में अच्छे लोगों का संग होता है तो आचरण अच्छा होता है और बुरे लोगों का संग होने पर बुरा आचरण होता है। नामना नष्ट सदाचारो दासिया संसर्ग दूषित, उस वेश्या के साथ रहने के कारण अजामिल अपवित्र हो गया था। बिजनेस क्या करता था, उसका धंधा क्या था? कहते बंदेक शकेत वेश चोरिये गरहिता वृत्ति मास्थित। किसी को किडनैप करना, चोरी करना, जुआ खेलना और पशुओं का वध करना, चारों प्रकार के पाप यह अजामिल करता था और यह करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। एवं निवसतस्तस्य लाल्यानस्य तत्सुतान कालो अति तान महान राजन अष्टाशीतिश्चवा। इस प्रकार से पाप करते करते वेश्या के साथ रहते रहते इस अजामिल के जीवन का लंबा समय बीत गया। कितना समय बीता? अष्ट अष्टासी इति समा, अष्ट माने आठ, अष्टासी माने आठ और आठ अठासी वर्ष बीत गया। यह अजामिल अठासी वर्ष का हुआ। भक्त तो ऐसा मत समझिए कि ये अजामिल की कथा है, आचार्य गण कहते हैं ये अजामिल की नहीं, ये हमारी कथा है। क्योंकि अज का अर्थ होता है माया और मिल का अर्थ होता है मिल जाना। जो माया में मिल गया है उसे अजामिल कहा जाता है। तो हम सब लोग माया में मिल गए हैं, माया में फंसे हैं। कुछ लोग छोटे अजामिल हैं, कुछ बड़े अजामिल हैं, लेकिन अजामिल सब लोग हैं। 88 साल बीत गया और अजामिल के पाप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तस्य प्रवयस पुत्रा दस देशाम तु यौवनम। उस 88 साल की आयु में अजामिल ने एक पुत्र उत्पन्न किया। ये 88 वर्ष की आयु कोई पुत्र उत्पन्न करने की है? जंगल में जाकर भजन करने की है? लेकिन 88 वर्ष की आयु में उस वेश्या के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कल्पना करो भक्तों कितना काम ही होगा। ये सत्य है, जीवन में यदि भगवान का नाम लिया है, भगवान की भक्ति की है, तब बुढ़ापे में कुछ भगवान में मन लगता है। जीवन में यदि भजन नहीं किया है तो बुढ़ापे में भी व्यक्ति काम वासना घटती नहीं है, बढ़ती जाती है। 88 साल की आयु में एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर कहते हैं यद्यपि ये बहुत बड़ा पापी था, परंतु इसका जो दसवां पुत्र था, भगवान के भक्तों की कृपा से दसवें पुत्र का नाम नारायण हुआ। मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है, इतने बड़े पापी के पुत्र का नाम नारायण कैसे हुआ? तो पुराणों में कथा बताते हैं, एक समय की बात, अजामिल चोरी करने के लिए घर से बाहर गया था। उसी समय भक्तों की मंडली कीर्तन करते करते उस गांव में आई। यहां पर जैसे हमारे भक्त जाते हैं अलग अलग गांवों में, वैसे कीर्तन करते करते कई भक्तों की मंडली उस गांव में आई और गांव के कुछ बालकों को पूछा कि हमें बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, इस गांव में कोई ऐसे धर्मात्मा है जो हमको भोजन खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे? तो बालकों ने मस्ती मजाक करते हुए कहा, हाँ हमारे गांव में एक प्रभु जी है जो बहुत दान करते हैं, जो बहुत सेवा करते हैं। कहे कौन से प्रभु जी? कहते हैं अजामिल प्रभु। ये अजामिल प्रभु बहुत सेवा करते हैं। वास्तव में ये सेवा व्यवहार कुछ नहीं करता था। अजामिल यदि किसी भक्त को देख भी लेता तो उसे मृदंग करता, सब कुछ छीनकर उसे पीट कर वापस भेजता। इन बालकों ने मजाक की और ये सभी भक्तों की मंडली अजामिल के घर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी रह गई, कीर्तन करने लगी, बेल बजाया। अजामिल तो घर से बाहर गया था, वेश्या घर पर थी। वेश्या ने जब दरवाजा खोला और भक्तों का दर्शन किया, कहते हैं भक्तों का दर्शन करने से उस वेश्या का मन बदल गया। क्योंकि भक्तों का दर्शन इतना पवित्र होता है, कहते हैं गंगा में स्नान करने से व्यक्ति जितना पवित्र हो जाता है उतना ही पवित्र भगवान के भक्तों का दर्शन करने से हो जाता है। एक आचार्य तो कहते हैं कि भगवान के भक्त गंगा से भी पवित्र हैं। क्यों? क्योंकि गंगार परश हैल पश्चात पावन। गंगा नदी में तो हरिद्वार में जाने के बाद उनमें स्नान करोगे, वो भी श्रद्धा से युक्त स्नान करोगे, तब जाकर आप पवित्र होगे। परंतु भक्त का केवल दर्शन कर लो, दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। भगवान के भक्तों का दर्शन करने से व्यक्ति कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जिस कुल में भक्त का जन्म होता है वह कुल कृतार्थ हो जाता है, जिस जननी के गर्भ से भक्त का जन्म होता है वह मां कृतार्थ हो जाता है। भागवत में आया है भगवान के भक्त कुलम पवित्र जननी कृतार्था, कुल को कुल के कुल को तार देते हैं। तो भक्तों का दर्शन उस वेश्या ने किया, हृदय बदल गया। भक्तों ने कहा, हमने सुना है आपके घर पर दान और पुण्य होता है, हमको भूख लगी है, आप भोजन कराइए। वेश्या ने कहा, देखो किसी ने गलत पता दे दिया है, यहाँ पर कोई दानवान नहीं होता है। ये तो अच्छा हुआ हमारे पतिदेव घर पर नहीं है, नहीं तो सब लोग इंजर्ड होकर किसी के हाथ किसी के पांव तोड़कर वे भेजते आपको, तो अच्छा हुआ बाहर गए। लेकिन फिर भी आपको भोजन करने की इच्छा है तो आप घर पर पधारिए। भक्तों ने कच्चा सीधा लिया और रोटी सब्जी बनाने लगे। तब तक सब लोग भजन कीर्तन प्रवचन किए और फिर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाकर सब भक्त जब वापस लौट रहे थे, तो लौटते लौटते भक्तों ने कहा कि धन्यवाद आपका, आपने हमें भोजन कराया। वैसे तो हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु उस समय वो जो दसवां पुत्र था, अभी अभी जन्म हुआ था, उस वेश्या के गोद में था। पूछा, ये किसका पुत्र है? मेरा पुत्र। इसका नाम रखा है? भक्त ने पूछा, इसका क्या नाम रखा है? वेश्या ने कहा, अभी इसका नाम नहीं रखा है। तब भक्त ने कहा, इसका नामकरण कर दूं? वेश्या ने कहा, ठीक है कर दीजिए। तो भक्तों ने कृपा करके उस वेश्या के पुत्र का नाम नारायण रखा। बोलो नारायण भगवान की। कल्पना करो भक्तों, ये अजामिल अव्वल नंबर का पापी है। ऐसा एक भी पाप नहीं है जो अजामिल ने नहीं किया था, परंतु ऐसे पापी अजामिल का चरित्र श्रीमद् भागवत में स्थान ले लिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि उस अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था, और कुछ नहीं किया था। केवल अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम से रखने के कारण इतना बड़ा महापापी अजामिल श्रीमद् भागवत में स्थान ले लिया। अपने पुत्र का नाम यदि रखना है तो भगवान के नाम से रखना चाहिए। चिंटू मिंटू पिंटू बंटी, ऐसा नाम रखने से किसी का कल्याण नहीं होता है। वैसे तो हम भगवान का नाम लेते नहीं हैं, परंतु पुत्र का नाम यदि भगवान के नाम से रखेंगे तो कम से कम पुत्र के बहाने तो भगवान का नाम। हम सबको पुत्र का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। पहले के जमाने में आज से 500 वर्ष पूर्व आप देखिए, सभी का नाम भगवान के नाम से होता था। इस विज्ञान को हमारे बुजुर्ग हमारे जो बड़े हैं जानते थे, परंतु आज कोई इस विज्ञान को नहीं जानते और विचित्र विचित्र नाम रखते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, बिना अर्थ का नाम। नाम नारायण हुआ, ये सब भक्त वहां से चले गए। अजामिल को किसी ने कह दिया कि आपके घर पर कुछ भक्त आए हैं। अजामिल तो दौड़ते दौड़ते आ रहा था कि यदि मिल जाए तो मार दो, उसके हाथ पांव तोड़ डालूं। लेकिन घर पर आकर देखा तो भक्त लोग चले गए थे। वेश्या ने कहा कि हमारे घर पर साधु संत आए थे। अजामिल ने कहा, ठीक है, और कहा कि उन्होंने हमारे बेटे का नामकरण किया है। अजामिल ने कहा, चलो एक ना एक दिन हमको नामकरण करना ही था, तो भक्तों ने कर दिया, कोई बात नहीं, क्या नाम रखा है? तब जीवन में पहली बार उस वेश्या के मुख से वेश्या ने कहा कि प्रभु, उन भक्तों ने हमारे बेटे का नाम नारायण रखा है। अजामिल के कान में यह नारायण नाम गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जीवन में पहली बार अजामिल अपने मुख से भगवान का नाम पुत्र के बहाने, भगवान के बहाने नहीं ले रहा है, पुत्र के बहाने कहता है हे नारायण, मातुर अंकात मम अंकम आगच्छ। नारायण, अपनी माँ के गोद से मेरे गोद में आओ। परंतु नारायण नाम जैसे ही अजामिल ने लिया, कहते हैं कि उनके जीवन में जितने भी पाप थे ये सभी पाप जलकर भस्म हो गए। भगवान का नाम नहीं लिया है, पुत्र का नाम लिया है, परंतु पुत्र का नाम भगवान के नाम से है सभी। पर अब तो अजामिल अपने छोटे पुत्र में बहुत आसक्त था। जीवन में देखा गया है, माता पिता या तो अपने सबसे बड़े पुत्र में आसक्त होते हैं या तो सबसे छोटे पुत्र में। तो ये दसवें पुत्र में, छोटे पुत्र में बहुत आसक्त था। कभी भी खाता था तो कहता था, नारायण ने भोजन कर लिया, नारायण ने पानी पिया, नारायण क्या कर रहा है, नारायण नारायण। अब तो घर में नारायण नारायण ही होने लगा। परंतु अपने पुत्र में आसक्त अजामिल, स एवं वर्तमानज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायण। 88 साल में अजामिल अपने पुत्र में इतना आसक्त, उसे चाहिए कि भगवान का भजन करे, परंतु अपने पुत्र में इतना आसक्त हो गया कि अपने सिर के ऊपर मंडराती हुई मृत्यु को नहीं देख पाया। संसार में भी बूढ़े हो जाते हैं, परंतु संबंधों में और परिवारों में इतना आसक्त होते हैं कि मारने वाले काल को व्यक्ति देख नहीं पाते। देख नहीं पाया, मुझे मरना है, नहीं सोच पाया। और अंत में वह दिन करीब आ गया जो सबके जीवन में आने वाला है। इस संसार में और कुछ आए या न आए, परंतु मृत्यु सबके जीवन में आने वाली है। अजामिल के जीवन में यह दिन उपस्थित हो गया। सपास हस्तान तीन दृष्टवा, मृत्यु का दिन करीब आ गया। तो इस जीवन में बहुत सारे दुख हैं, परंतु सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो है मृत्यु का दुख, मरने का दुख। मरने का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब सुनते हैं कि एक दिन हमें मरना होगा, चिता के ऊपर जलकर राख हो जाएगा, जिस शरीर को हम संवारते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, ये शरीर एक दिन राख हो जाएगा। एक कवि तो कहते हैं, डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। जब जब मैं मरने का नाम सुनता हूं मैं कांप जाता हूं। मृत्यु बहुत भयावह होती है, बहुत भयावह होती है। वह तो जो मरने वाला है यही इसका अनुभव कर सकता है, और सबके जीवन में आने वाली है। और जब आती है, भगवान कपिल देव कहते हैं कि मृत्यु के समय एक नहीं 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतने दर्द का अनुभव होता है। बहुत दुखी होता है जीव उस मृत्यु के समय में। व्यक्ति इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सपास हस्तान तीन दृष्टवा पुरुषान भृश दारुणान वक्र तुंड ऊर्ध्व रोमण आत्मानम नेतु मागतान। इस आत्मा को शरीर से खींचने के लिए तीन तीन यमदूत आते हैं, जबरदस्ती न चाहते हुए भी मार रहे हैं। वास्तव में इस संसार में बहुत बड़ा आश्चर्य है, सबके जीवन में मृत्यु आने वाली है, परंतु उस मृत्यु के बारे में कोई नहीं सोचता है। जीवन में जो होने वाला है उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, और जो नहीं होने वाला है उसके लिए लोग रात दिन सोचते रहते हैं। करोड़पति व्यक्ति कभी नहीं बनने वाला है, लेकिन रात दिन मैं धनी बनूंगा और उसके लिए मेहनत करते हैं। जो जीवन में नहीं मिलने वाला है, नहीं आने वाला है, इसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और जो चीज जीवन में आने वाली है उसके लिए एक बार भी नहीं सोचते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न था कि आश्चर्यम, इस संसार में आश्चर्य क्या है? उत्तर देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। एक दिन में हजारों हजारों लोग गच्छन्ति जा रहे हैं, कहां? मरकर यमराज के दरबार में। हजारों हजारों लोग अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है, शेषा स्थावर निच्छन्ति किम आश्चर्यम यतः परम। आश्चर्य की बात यह है, हजारों हजारों लोग मर रहे हैं, हमसे बड़े मर गए, हमसे छोटे एक्सीडेंट में मर रहे हैं, आजू बाजू में ऊपर नीचे रहने वाले ये सब लोग मर रहे हैं, परंतु संसार में रहने वाला जीव एक बार भी नहीं सोचता है कि मुझे भी एक दिन मरना है। सबसे बड़ा आश्चर्य।